हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 18, 19 एंड 20। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्राय श्रवसि नमो नमः। किरातहूण द्रपुलिन्दपुल्कषा, आभीरशुंभा यवनाकसाधय, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं, पंगुं लंघयते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्यईश्वरं।
श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। अब सुखदेव गोस्वामी योगी जन जिस प्रकार से अपने प्राणों को त्यागते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। ये क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो बहुत सारे भक्त, बहुत सारे टाइप के लोग वहां पर सुन रहे थे, केवल परीक्षित महाराज ही नहीं थे, बहुत सारे योगी थे, तपस्वी थे, ध्यानी थे, जो अष्टांग योग करते थे उनके सब, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की इच्छा थी कि भागवतम महापुराण का जो तत्व है, जो रहस्य है, जो पका हुआ फल है भक्ति का, वो सबको खिलाना चाहते थे। तो अब उनके इंटरेस्ट बढ़ने के लिए वो कुछ योगियों के लिए भी ना बता रहे हैं कि वो किस तरह से प्राण त्यागते हैं, उनका क्या तरीका होता है, किस तरह से श्वासों को रोकते हैं, अपने प्राण वायु को किस तरह से ऊपर लेके जाते हैं, तो उसके विषय में भी ये सब बता रहे हैं। असल में ये जो अध्याय है उसमें हर तरीके के लोगों का, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया था कि मृत्यु के समय हम किस तरह से धारणा बनाएं या भगवान के अंदर किस तरह से धारणा करें, तो अलग अलग लोग भगवान के अंदर अलग अलग तरीके से अपना ध्यान लगाते हैं, तो सारे लोग के विषय में बताया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ हम भक्तों के लिए समझाने के लिए नहीं है। फिर आगे से श्लोक नंबर 32 में जब भक्ति योग स्टार्ट होगा उसको हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करना। मैं जीवन में फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ रही हूँ और इतना डीपली सुना नहीं है कभी, तो आप सब, हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल आपकी प्रार्थनाओं के बल पर ही कर पाती हूँ। आप सब कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। हम सबको ये श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर मिला है, भगवान ने कृपा की है मुझे बोलने का और आपको श्रवण करने का, जो भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक अच्छे तरीके से करें और अपने से जीवन में श्रीमद् भागवतम महापुराण को कंप्लीट पढ़ सकें। तो जितना भले हमें नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे श्लोक होंगे, मेरी बुद्धि बहुत ही हीन है, मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, और अगर नहीं समझ सके तो भी ये भागवतम महापुराण परम पवित्र है, इसके अंदर वो पवित्रता है। जैसे अगर किसी को गंगा की महिमा नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिमा नहीं पता तो वो स्नान करेगा तो उसके अपराध नष्ट होंगे, नहीं नहीं, उसको महिमा नहीं पता है फिर भी गंगा में स्नान करने से उसके अपराध नष्ट होंगे। किसी को अगर जहर के विषय में नहीं पता है कि ये जहर है तो मैं खाऊंगा तो मुझे मृत्यु आ जाएगी, तो क्या जहर उस पर असर नहीं करेगा, उसकी फिर भी मृत्यु आ जाएगी। उसी तरह यदि कोई अमृत का पान करेगा, भले उसे नहीं, उसको अमृत के विषय में कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन उसे अमृतत्व प्राप्त होगा। उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप है, भले हमें उसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने का मतलब है साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। भगवान साक्षात भागवतम के रूप में, ये वांगमय शब्द रूप हमारे पास भागवतम महापुराण है, श्रीमद् ये साक्षात भगवान है। तो हम जब भागवतम के शब्दों को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है हम साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें हृदय से इच्छा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हम जितना पढ़े हमें समझ में आए, लेकिन नहीं भी आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से हम ग्रहण नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कंटिन्यूस उसको सुनना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति के अंग बताए ना, उसमें एक है भागवतम को पढ़ना, भागवतम को श्रवण करना। अगर हम भागवतम को श्रवण कर रहे हैं तो समझो एक परिपूर्ण भक्ति है। और स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, हमें कंटिन्यूस भागवतम को श्रवण करना चाहिए, कंटिन्यूस मोहर हो रसिका वो विभावता। कभी ना कभी तो भगवान बुद्धि देंगे और हम इनको, इन शब्दों को श्रवण करते करते समझने का भी प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य हमें समझ में भी आएंगे। तो हमें जो कुछ अभी योगियों के विषय में बता रहे हैं वे कहते हैं, श्लोक नंबर 18 देखिए, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं,
परम पदम वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेति इत्यतदुत्सृक्षव विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्या हपदं पदे पदे परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेतीत्यतदुत्सशिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्या हपदं पदे पदे।
शब्दात् परं पदं वैष्णवम् अनन्ति तत्। परम पदम यानी परम का मतलब होता है परम और पदम का मतलब होता है पद या स्थान। वैष्णवम यानी भगवान के साथ। अमानन्ति वे जानते हैं तत् यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान का जो वास्तविक धाम है भगवान के विषय में वो जानते हैं, उस परम पद के विषय में जानते हैं। इस यन्नेति नेतीत्य तद उस शिक्षव यन्नेति यानी जो यह नहीं है न इति यह नहीं है मतलब इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु को देख के उनको लगता है ये नहीं है ये वो नहीं है जो परम पद है जो मुझे चाहिए इस भौतिक जगत में कहीं नहीं है। तत् ईश्वर विहीन क्योंकि यहाँ पर भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है। वो आनंद जो मुझे वास्तविक आनंद चाहिए वो इस भौतिक जगत में नहीं है तो वो क्या करते हैं उत्सी सृक्षवा यानी वो हर एक वस्तु से बचते हैं कि नहीं कहीं इस माया के किसी वस्तु में मेरा आकर्षण उत्पन्न न हो जाए, इसलिए विसृज्य पूर्ण रूप से भौतिक वस्तुओं को त्याग देते हैं। क्योंकि योगी जनों को पता है कि भले ही हम कितना भी प्राप्त कर लें इस भौतिक जगत में मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो कि मेरा वास्तविक लक्ष्य है, तो वो क्या करते हैं उत्सीक्ष्वा वो इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु से बचते हैं विसृज्य और हर एक वस्तु को त्याग देते हैं। और उसके बाद वो क्या दौरात्म्य मतलब इस भौतिक जगत में जो जटिलताएं हैं मुश्किल काम कुछ नहीं करते। अनन्य पूर्णतया सौहृदा उत्तम अभिलाषा से उनको अपनी वास्तविक जो उत्तम अभिलाषा होती है वो याद होती है, इसलिए हृदय उपगुह्या हृदय में उस बात को धारण करते हैं और अर्ह एकमात्र पदम पदे पदे उस चरम लक्ष्य के लिए क्षण क्षण में आगे बढ़ते हैं यानी इस भौतिक जगत की सारी वस्तुओं को त्याग देते हैं उससे बचते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी वास्तविक लक्ष्य नहीं है। और जो उन्होंने अपना वास्तविक लक्ष्य बना लिया है भगवान का जो पूर्ण आनंदमय धाम है भगवान के चरण कमलों में अपने हृदय को उसी में लगते हैं और क्षण क्षण में उसी भगवान की पूजा करते हैं। अनुवाद देखिए, योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है जटिलता उत्पन्न नहीं करता अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। वो भौतिक वस्तुओं को क्योंकि वो भगवान से दूर करने वाली हैं उनसे बचता है और अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करके हर क्षण में भगवान की पूजा करता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से बता रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में मद धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख हुआ है। भगवान कहते हैं यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम वो मेरा धाम है जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आया जाता है। तो और उसके अलावा भगवान कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा धाम है। और इसके अलावा भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत्ति तत्वता तक्ता देवम पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। तो भगवान ने कई बार अपने धाम के विषय में बताया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है जिसमें स्थित ग्रह वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। परव्योम में बहुत सारे वैकुंठ हैं जो भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक आकार से तथा इसके सात आवरणों से बहुत बहुत दूरी पर है, वहां ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी हैं। भगवान ने कहा 15.7 में, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, उस मेरे उस परम धाम को न सूर्य की आवश्यकता है न अग्नि की आवश्यकता है न प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है, बहुत तेजस्वी है। भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृद मानकर सदैव भगवान के विषय में सोचते हैं। ये भगवान के भक्तों का लक्षण है, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल भगवान ही मेरे सुहृद हैं, इसलिए उनके विषय में सोचकर ही उनको आनंद आता है। भगवान कहते भगवत गीता में कि मच्चित्ता मत्कतः प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्योंकि मेरे भक्तों को केवल उसी में आनंद आता है, क्योंकि उनका हृदय मुझ में लगा हुआ है, उनकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, तो वो बहुत आनंद महसूस करते हैं जब मेरे बारे में बात करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको उसी में आनंद आता है और वो मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते, उसको किसी चीज में रुचि ही नहीं है, भौतिक वस्तु चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, भौतिक है, इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में, जैसे बताया योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो उनमें उनका कोई आकर्षण नहीं है, केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ही वे ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रह्म क्या है माया क्या है और किस तरह से अनाम भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के विषय में कुछ भी उनको जानने की आवश्यकता ही नहीं महसूस करते हैं, उनको ये व्याख्या नहीं उसमें समय नहीं बताते हैं। वे ना तो अपने को भगवान के साथ जुटा तदाकार हुआ मानते हैं, नहीं वो जानते हैं कि भगवान मालिक है मैं सेवक हूँ, हम कभी भी भगवान के साथ मिलकर एक नहीं हो सकते। ना यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, वो ये नहीं बोलते कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को विषय में जानते हैं और कि ईश्वर है ही नहीं या जीव ही ईश्वर है, वो ये भी नहीं कहते कि ना भगवान नहीं है या ईश्वर जीव ही ईश्वर है। जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं, ना ही वे किसी स्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं। जो वास्तव में दिव्य धाम के मार्ग में कोई प्रकार से अवरोधक होते हैं, यानी कि उनको ये सब चीजें जो है वो उन सबको त्याग देते हैं, वो भगवान की भक्ति में ही अपने उनके चरणों में अपने हृदय को लगाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना छुपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। अभी
ऐसे भी श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, वो चाहते हैं कि बस मुक्ति मिल जाए और भगवान के अंदर लीन हो जाओ। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का पालन गलत मार्ग निकाल भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्ग च्युत करते हैं जो निरे मूर्ख हैं या उन्हीं के समान ही व्यभिचारी होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लोग अपने अपने मत के अनुसार सब सोचते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा आध्यात्मवादियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर उनको किसी वस्तु की इच्छा है या फिर भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान के अंदर कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिकवादी नहीं हो सकते। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से वो बचना चाहते हैं जो वास्तविक योगी जन होते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता होता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। वो जानते हैं कि हर एक वस्तु भगवान से संबंधित है, तो भगवान का एक अस्तित्व है, तो ये सब भगवान के विषय में ये सारे तर्क नहीं करते। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है। जाना किधर है? जहां पर हम जाकर वापस नहीं आए वो वैकुंठ लोक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति करो और मुझे अंदर समा जाओ। भगवान ने कहा मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम में आओगे। तो वास्तविक स्थान जहाँ जाना है, गंतव्य क्या है? वैकुंठ लोक, जिन्हें परम पदम कहा गया है। यहाँ पर बताया गया परम पदम वैष्णव मान मामंती तत् कि वो वैष्णव विष्णु लोक जो है वही परम पद है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पद कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। श्रीमद् भगवत गीता 14.27 में भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म जो है वो भी मेरे ही द्वारा प्रकट हुआ है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह भलीभांति जानता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गूंथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो ब्रह्म और अब्रह्म में अंतर करने के लिए सारा दिन मेंटल स्पेकुलेशंस करता रहे या शास्त्रों में ढूंढता रहे। वो भगवान से प्रेम करता है, अपने संबंध को जानता है और ये भी जानता है कि भगवान जिस ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने कहा जिस भाव से मेरी भक्ति करोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ डील करूंगा। तो वो जो क्योंकि भगवान से प्रेम करता है तो भगवान का प्रेम का अनुभव भी करता है, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग नहीं उन्हीं की सेवा में करना चाहता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपना अनुचित प्रभुत्व जताकर के किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण
उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से भक्त और जो दुरात्मा होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, उनके विषय में बताया कि भक्त की एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए प्रत्येक वस्तु को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है और उसी में वो आनंद प्राप्त करता है। और यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया जो योगी जन होते हैं, वास्तविक जो योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु जो भौतिक होती है, जो ईश्वर विहीन होती है, उससे बचते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का पता होता है कि उन्हें उस परम स्थिति को जाना है, परम पद को प्राप्त करना है जहाँ प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित होती है। तो वो निराकार या साकार या ब्रह्म में उलझते नहीं है, वह शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। उसका एक ही काम होता है कि ये न कहना प्रकार है, प्रत्येक क्षण मेरा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्लोक नंबर 19, परमेद्व्यवस्थितो विज्ञान दिग्वीर्य सुरिंधिताशय स्वपाशिणा ना पीड्य गुदं ततो निलं स्थानेषु षट्सून्नमयि जितक्लमः इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञान दिग्वीर्य सुरिंधिताशयः स्वपाश्विना पीड्य गुधं ततो नीलं स्थानेषु षट्सून्नमयि जितक्लमः इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरिंधिताशय स्वपाश्विना पीड्य गुधं ततो नीलं स्थानेषु षट्सून्नमयि जितक्लमः। शब्दात् इत्थं मुनिस्तु परमेत व्यवस्थितो, इत्थम माने इस प्रकार, इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे पहले बताया कि भौतिक कोई भी वस्तु की उसके अंदर इच्छा नहीं होती है, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करता है, इस तरह से जब मुनि तू लेकिन उपरमेत अलग हो ले व्यवस्थिता और भली भांति इस स्थिति में जब स्थित हो जाए विज्ञान अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान अधिक वीर्य सुरिंधता, वीर्य यानी बल, सुरिंधता मतलब बहुत ही भली भांति जब वो नियमित तो हो जाए तो आशय, आशय मतलब जीवन उद्देश्य, फिर उसका एक लक्ष्य बन जाता है क्या, स्वपाश्निना पीर्य गुधम तत, स्वपाश्निना मतलब अपनी एड़ी से, आपीड्य रोक कर, गुधम यानी वायु द्वार को, अपनी एड़ी से वायु द्वार को रोक देता है और उसके बाद क्या करता है, ततः यानी तत्पश्चात अनिलम यानी प्राण वायु को स्थानेषु स्थानों में षटसु छह मुख्य जो स्थान होते हैं, पहले गुध द्वार को रोक कर और उसके बाद प्राण वायु को ऊपर की तरह जितने भी छह स्थान है ना, जैसे उदर है, फिर वक्षस्थल और इस तरह से तालु और फिर ऊपर लाकर उन्नमयेत ऊपर उठाए, जितक लमह यानी भौतिक इच्छाओं को पूरा दमित कर दे, उस टाइम उसको कोई भी भौतिक इच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं योगी जन होते हैं, योग अभ्यास करते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है, योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ करना, लेकिन यहाँ पर बता रहे नहीं, योगा का मतलब ये नहीं होता है कि अपने शरीर को निरोग करो या स्वस्थ करो। योगा का क्या मतलब होता है, अपनी प्राण वायु को ऊपर उठाना है, भौतिक सारी इच्छाओं को दमित करना है। कुछ लोग बोलते हैं योग बल से हम अपने शरीर को इतना स्वस्थ बनाएंगे कि अधिक से अधिक काम भोग वासना को पूरा करेंगे, इसलिए योग नहीं होता है। बल्कि योग तो इसलिए होता है कि हम वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, और हृदय में केवल एक ही इच्छा होती है उस टाइम पर कि हम अपना संबंध भगवान से जोड़ें, और भगवान के साथ संबंध जोड़ के रियल आनंद, क्योंकि योगी को पता होता है मेरा रियल लक्ष्य क्या है, मेरा रियल आनंद क्या है, तो उसके लिए वो यहाँ पर प्रयास कर रहा है। अनुवाद देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। स्थानेषु षट् सून्न मयि जित्त क्लमः, सारी इच्छाओं को जीत लेना चाहिए, दमन कर लेना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार यानी गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः छह मुख्य स्थानों यानी चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर योगी किस तरह से अपने इस भौतिक शरीर को त्याग करता है उसके विषय में बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ हैं। जब जीव को ब्रह्म अनुभूति हो जाती है ना, तब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। श्रीमद् भगवद्गीता में 18.54 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोष्यति न कांक्षति। ब्रह्मभूत जो स्थिति में आ जाता है उसको ना कोई शोक होता है ना कोई इच्छा होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग हो जाता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा पांच तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। क्या है ये भौतिक इच्छा? वास्तव में क्या है कि भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित। मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है और शरीर को ही इच्छा होती है, आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती है। तो भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और उसके बचकाना और व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियम पर विजय प्राणी के रूप में तथा पांच तत्वों के संस्थानों पर प्रभुत्व जताने के, इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताना, इस भौतिक वस्तुओं पर, भौतिक व्यक्तियों पर, इसी के लिए वो इच्छा किसी वास्तविक ज्ञानी की नहीं हो सकती है। ये तो बचकाना है, क्योंकि जो अभी तक आध्यात्मिक स्थिति पर नहीं आया है, देहात्म बुद्धि में, उसी के अंदर भौतिक इच्छा आती है। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। अभी ये बहुत ही हम देखते हैं जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो भगवान को भी ललकारते हैं, भगवान की सत्ता को। भगवान तो एक क्षण में जीव के समस्त प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं स्वस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्धि आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। वास्तविक ज्ञान यही है कि भगवान वासुदेव ही परब्रह्म है और हम सब उनके अंश हैं। जो वास्तविक ज्ञानी होता है, स्वस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा को ये ज्ञान होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य की दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। इसके अतिरिक्त जो प्रभुत्व जताना है या इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो हमारा अज्ञान के कारण हम ऐसा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलापों को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। उसको पता है ये मेरा काम नहीं है, प्रभुत्व जताना नहीं, मैं तो सेवक हूँ, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। तो ये सारे फिजूल के उल्टे सीधे काम बंद कर देता है और वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह से जुट जाता है। श्रद्धा हो जाती है उसको कि भगवान ही मेरे स्वहृदय हैं और मुझे आनंद केवल भगवान की सेवा करने से प्राप्त होगा। ये अज्ञानता है जीव की, जब वो ये सोचता है कि भगवान से विलग होकर उसको आनंद प्राप्त कर सकता है। जीव ये सोचता है कि किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़कर या किसी वस्तु को अर्जित करके मुझे आनंद आएगा, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि जीव जब तक भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ता, जब तक पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वो आनंदित नहीं हो सकता है। और जब एक जीव को इतना ज्ञान हो जाता है तो फिर वो क्या करता है? यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह से जुट जाता है। आगे, सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे उस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। अभी जो सक्षम योगी होती है उसको क्या बताते हैं यहाँ पर? जैसे सुखदेव गोस्वामी बताया, उसे गोदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः छहों स्थानों यानी चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। गोदा स्थान को बंद करके प्राणवायु को कैसे ऊपर उठाना है? ये स्थान है, पहले नाभि तक, उसके बाद उदर, फिर हृदय, वक्षस्थल, तालु, भावों तथा ब्रह्मग्रंग्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधक एक तरह का भौतिक प्रयास है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये तो एक भौतिक प्रयास है, वास्तव में आध्यात्मिक जो है वो भगवान के साथ हृदय जब प्रेम में लीन हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, तो ये सब यांत्रिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है। फिर तो मन स्वतः भगवान के अंदर लगेगा, बुद्धि स्वतः कृष्ण के विषय में सोचेगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते, प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास आध्यात्मिकवादी के लिए बहुत सामान्य होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। पहले क्या था कि इतना ज्यादा व्यभिचार नहीं था, वातावरण इतना दूषित नहीं था, तो एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे कर सकता था। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो साधारण सा और बहुत ही आसान तरीका है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और मन की योग अभ्यास से भी तो मन को ही एकाग्र करना है। तो मन को यदि इस कलयुग में एकाग्र करना है तो उसका एक ही तरीका है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिनों भगवान के नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त प्राप्त फल प्राणवायु के भीतर अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि जब जीव भक्त जब प्रेम के साथ भगवान का नाम लेता है तो हृदय का दर्पण पवित्र हो जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर जो भौतिक वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्मश हैं, वो सब धुल जाते हैं और फिर भगवान के साथ जो संबंध स्थापित होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है और वो दीर्घ काल तक भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। वरना तो जो यांत्रिक क्रिया है वो एट अ टाइम जब प्राणवायु ऊपर है तब तक तो वो जुड़ा है, फिर वापस से जैसे ही ध्यान टूटा तब समझो संबंध टूट जाता है। लेकिन एक बार जब भक्त का प्रेम के साथ भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि जीव ये जान जाता है कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ है और कृष्ण के विषय में सोचकर कृष्ण के प्रति कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करके ही मुझे आनंद आ रहा है। मैं कितना सक्सेस हो रहा हूँ, कितना मैं इसमें कर पा रहा हूँ, ये सब नहीं देखता, बस वो कृष्ण से प्रेम करता है और वही प्रेम जो है वो उसको भगवान तक पहुँचा देता है। वही भाव जो है वो कृष्ण, क्योंकि भावग्राही है तो हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना है कि मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करना कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।